하레
하레
하레 크리스나
하레
크리스나 시리 गौरनिताय इस्कान प्रचार केंद्र पंचशील में आज जन्माष्टमी महोत्सव के इस महान अभिषेक छप्पन भोग महाआरती और सत्संग के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। वैसे इतना सबको हरे कृष्णा, सबको प्रशंसा हो रही है, आनंद है, सुख है, उल्लास है कृष्ण के जन्म उत्सव का। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, साबित हो जाती है कि हमारा भगवान के साथ कोई संबंध है। भाई अगर कोई संबंध नहीं होता तो किसी के जन्मदिन पे हमें खुशी क्यों होती। कितने लोगों का जन्मदिन रोज मनाया जाता है दुनिया में कहीं भी, तो उसमें हम कहाँ जाते हैं। ये जन्मदिन में अगर हम आए हैं और मना रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा भगवान के साथ कोई संबंध है। तब हमको अंदर से इतना सुख मिल रहा है, उत्साह काम करने में भी। इतनी सारी मैं देखा अंदर, वो बच्चियाँ माताजी पूड़ी बेल रही थी, अपने घर में नहीं बेलती है, यहाँ सेवा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं भाई। कोई रिश्ता है तब कर रहे हैं ना। तो असल में कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य ये है कि हमारा भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसको हम भूल गए हैं। अब पुनः उसको अगर स्थापित किया जाए तो हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएं। हमारा और भगवान का नित्य शाश्वत संबंध है। हमारा भगवान के साथ नित्य और शाश्वत संबंध है। उस संबंध को भूलने के कारण हम संसार में दुख भोग रहे हैं, और वो संबंध हमारे को मालूम पड़ जाए, उसकी जानकारी हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। क्योंकि भगवान सब राजाओं के राजा है। जब उनके साथ हमारा संबंध है तो संसार में कौन सी समस्या बाकी रह जाती है जिसका समाधान नहीं हो सके। बस इतना ही है कि हमने संबंध भुला दिया है, बीच में माया ने रुकावट डाल दी है। तो भगवान के जन्म के विषय में सबसे मुख्य भगवद गीता का एक श्लोक है, उसका आप उच्चारण कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति स्वार्जुन। ये श्लोक सबसे मुख्य भगवद गीता का श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अवतार लेने के कार्य को, मेरे जन्म को, और जो मैं यहाँ लीला करता हूँ, बाल लीला से लेके गौचारण लीला से लेके गोपियों के संग रास लीला तक, या महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देने तक, जो भी मेरी द्वारका में लीलाएं हैं, मथुरा में है, वृंदावन में है, इनको जो दिव्य मानता है और जानता है। दिव्य का मतलब सामान्य लोगों जैसी नहीं है, ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। ये सामान्य नहीं है, ये दिव्य है, ये ट्रांसेंडेंटल है। और दिव्य किसको कहते हैं, अलौकिक किसको कहते हैं, जिसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है वो अलौकिक है। जो प्रकृति के सतो रजो और तमो गुण में प्रभाव में काम होते हैं वो सारे लौकिक होते हैं। तो ये संसार सारा तीन प्रकृति के गुणों से चलाया जाता है। तमोगुण रजोगुण प्रायः ज्यादा ही संसार को पकड़ के बैठता है, कुछ साधु संत महात्मा सतोगुण में हो सकते, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर जो है वो भगवान की दिव्य लीलाओं, उसको दिव्य कहते हैं, जो तीनों गुणों से परे हो, जिसके ऊपर गुणों का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर माया का प्रभाव न पड़े। ऐसे जो तत्व को जानता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति हो जाती है और भगवान के नित्य धाम में निवास करता है, भगवान का संगी साथी होकर। तो ये श्लोक में जो मुख्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन भगवान के जन्म का रहस्य क्या है, दिव्यता क्या है, अलौकिकता क्या है, वो हम भागवत के शब्दों में ये सुनेंगे। भगवान अपि विश्व आत्मा। भगवान कैसे हैं? बोला भगवान विश्व आत्मा है। देखो हम अपने आप से प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि जी जिंदा है इसलिए प्यार करते हैं। जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा है इसलिए। कोई भी आदमी इस दुनिया में अपने आप को प्रेम इसलिए करता है क्योंकि आत्मा है। आत्मा नहीं रहे तो प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी सारे प्रेम संसार के तब तक है जब तक हम जीवित हैं, तो हम जीवित तब तक है जब तक आत्मा है। इसका मतलब सारे प्रेम का असली कारण है आत्मा। तो आत्मा के कारण हम अपने आप से प्रेम करते हैं और भगवान विश्व आत्मा है, वो सबसे प्रेम करता है। हम तो केवल अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान सबसे प्रेम करता है क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है। सुहृद सर्वभूतानाम, और सबका शुभ चिंतक है, सबका हितेशी है, सबका अज्ञात मित्र है। तो वो हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम तो सबसे करते हैं भगवान, लेकिन एक शब्द आगे बोल दिया व्यास देव ने, भक्तानाम अभयंकर, जो अपने निज भक्त है उनको भय से मुक्त करता है। इस संसार में पदम पदम विपदम, एक एक कदम के ऊपर भय है इस दुनिया में। ये दुनिया भय है, इस दुनिया में चारों ओर से है। भय किस बात का है? मृत्यु का भय है, सब कुछ छिन जाने का भय है। जवानी चली गई और बचपन चला गया कि जवानी मिल जाएगी, और जवानी चली जाती है पैसा कमाने के पीछे, पता नहीं लगता है। एक दूसरे की लालच में सब कुछ जा रहा है। तो ये भय लगा रहता है कि जो अब है वो रहेगा नहीं। ये भय इस दुनिया का स्वरूप है, ये भय वाली दुनिया है, भयानक है ये अपने आप में। सो भक्ता नाम अभयंकर, अपने भक्तों को बिल्कुल भय से मुक्त करने के लिए भगवान, ये भगवान का मुख्य उद्देश्य है, अपने भक्तों को भय से मुक्त करना। और सब प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन भक्त वापस भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान उनको भय से मुक्त करते हैं। भगवान की ओर से प्रेम तो सबसे सदा के लिए है, लेकिन जो वापस मुड़ के भगवान से प्रेम करते हैं उनको भक्त कहते हैं। तो भक्त की परिभाषा क्या है कि भगवान तो सबसे प्रेम कर ही रहे हैं क्योंकि सबके पिता है, वो तो हमको कभी भूलते नहीं है। तुम भुलाओ वो नहीं भुलाता है, रोज तुमको रोजी रसाता है। तुम भुलाओ तुमको नहीं भुलाता, रोज तुमको रोजी रसाता है। अखुट खजाना उस ईश्वर का तुम खा के खपा नहीं सकते। उसका खजाना अखुट है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, कितना भी खाओ खत्म होने वाला नहीं। इसलिए वो कितना दयालु है, वो तो हमसे प्रेम करता है, सदा करता रहता है। उसने कभी हवा किसी की बंद नहीं की, किसी का पानी बंद नहीं किया, किसी का खाना पीना बंद नहीं किया है। चाहे हम मंदिर जाएं चाहे न जाएं, चाहे सेवा करें न करें, लेकिन वो तो देता ही रहता है। 12 मास देता रहता है, सबको देता रहता है, पशु पक्षी को देता रहता है, मानव को दे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जो वापस मुड़ के उससे प्रेम करता है उसको भक्त कहते हैं। ये भक्त की पहचान है, भक्त की परिभाषा सिर्फ इतनी है। बच्चे तो सारे ही हैं, लेकिन एक बच्चा मुड़ के सेवा करता है वो माता पिता को अच्छा लगता है। सभी बच्चों को हिस्सा तो दे दिया, लेकिन जो सेवा करता है उसका वो हमेशा दिल के ऊपर रहता है, और उसको कभी दुखी नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते, लेकिन उसका तो विशेष दुख का निवारण करना, ये पिता का, भगवान हमारे परम पिता है। तो भक्ता नाम अभयंकर आवेश मन, आवेश अंश भागे न, प्रवेश किया मन में अपने सारे अंशों के साथ। जो भी पहले भगवान के अवतार हुए हैं उन सब अवतारों को अपने अंदर समाकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया मन में। किसके? अनंक दुम दुबी, वसुदेव का नाम है अनंक दुम दुबी। अनंग दुमदुमी उसको कहते हैं जिसके लिए स्वर्ग में नगारे बजे, दुमदुमी बजे, ढोल बजाए जाए किसी के जन्म के ऊपर, ऐसा कोई उत्सव हो, कोई बहुत अच्छा कार्य होता है तो स्वर्ग में बड़े बाजे बजते हैं। तो वसुदेव के जन्म के समय स्वर्ग के बाजे अपने आप बज गए थे, इसलिए वसुदेव का एक नाम है अनंत दुमदुमी। तो भगवान वसुदेव जैसे अपने प्रिय भक्त को भय से मुक्त करने के लिए उनके मन में प्रवेश किया, और वसुदेव के मन में जैसे भगवान ने प्रवेश किया, वसुदेव एकदम चमकने लगे, उससे प्रकाश निकलने लगा, क्योंकि भगवान की ज्योति से ब्रह्म ज्योति बनती, भगवान के जो विग्रह से, रूप से जो प्रकाश निकलता है, उससे सारा प्रकाश, जो भी प्रकाश दुनिया में, वहां से आता है। तो वो प्रकाश का पुंज है, जिसके मन में आ गया तो वो भी प्रकाशमय हो गया। इसलिए भगवान के जो भी फोटो छपते हैं तो उसके पीछे एक लाइट का, एक बहुत प्रकाश का गोला बना हुआ होता है। साधु महात्मा संत जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को साक्षात्कार कर लिया, उनके पीछे भी प्रकाश दिखाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं तो उनका प्रकाश बाहर दिखाई देता है। और फिर लिखा है, वसुदेव ने अपने मन में आए हुए भगवान को देवकी के दिल में स्थानांतर कर दिया। देवरूपेण देवकी, देवकी कैसी है? वो देवता स्वरूप है। वसुदेव के मन से भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए और देवकी भी चमकने लगी। और उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य अस्त होते ही चंद्रमा प्रकाशमान होता है, तो चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से फिर प्रकाशित होता है, ऐसे वसुदेव के हृदय से प्रकाश का पुंज भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए। और ऐसे भगवान के जन्म का वर्णन भागवत में है, और ये जन्म दिव्य है, क्योंकि भगवान मन में आके हृदय में गए, और फिर जन्म के समय भगवान के सारे देवता, ब्रह्मा, शंकर, चंद्र, इंद्र, वरुण, नारद आदि ऋषि प्रार्थना करने के लिए आए भगवान को जन्म से पहले। तो कोई सामान्य व्यक्ति संसार में गर्भ में आता है तो उसकी तो कहते हैं, अरे गर्भ में आ गया तो बेचारा ने कोई कर्म किया होगा तभी आया, नहीं तो क्यों आ गया। लेकिन भला भगवान के गर्भ की स्तुति की गई है देवताओं के द्वारा, का भगवान आप अजन्मा है लेकिन हमारे वचन को सत्य करने के लिए कि आपने कहा था आएंगे, आप आ ही गए हैं। और जैसे देवता बाहर गए तो वसुदेव और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, सर के ऊपर मुकुट पहना हुआ और गले में वैजंती माला, पीला पीतंबर पहना हुआ, ऐसे दोनों के सामने प्रकट हुए। अब ऐसा कोई बच्चा तो प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा भागवत में वर्णन है। भगवान प्रकट हुए, वसुदेव देख के आश्चर्य में, अद्भुत बालक है, और प्रणाम करके उसको प्रार्थना करने लगे। देवकी ने भी प्रार्थना की, तब भगवान बोलने लगे, कहा देवकी, वसुदेव तुमने बहुत तपस्या करके मेरे जैसा पुत्र मांगा, और मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए मैं 3 बार वचन अपने को सत्य करने के लिए आपका पुत्र बना। पहले आप प्रश्नी और शत्रुपा थे, तब मैं प्रश्नी गर्भा था, फिर अब आदित्य और कश्यप हुए, तब मैं वामन देव के रूप में आपका पुत्र हुआ, अब वसुदेव और देवकी आपके घर में वसुदेव कृष्ण के रूप में मैं आया हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भय न हो, मैं आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था इसलिए मैं ऐसे प्रकट हुआ हूँ। तो देवकी ने कहा, फिर आप चतुर्भुज रूप में कैसे खड़े हैं, आप तो बालक बन जाइए, क्योंकि आश्चर्य लोग कहेंगे भगवान आपके कैसे, आपके उधर से भगवान प्रकट हुए। तो भगवान छोटे से बालक बने, तो कहे अगर आपको भय लगता है तो आप मुझे यहाँ से ले चलो नंद गोकुल में, और वहाँ यशोदा के पास छोड़ के आओ, और वहाँ से कन्या को ले के आओ। ये भगवान ने दोनों को आदेश, वसुदेव को आदेश दिया। तो अब ऐसा भगवान के जन्म का वर्णन है, ये कोई सामान्य वर्णन नहीं है, और न ही कोई उपन्यास लिखने वाला ऐसे लिख सकता है। ये उसके दिमाग में भी आने वाला नहीं है कि ऐसे भगवान का कोई जन्म हो सकता है। तो भगवान का जन्म भी अद्भुत है और भगवान के कर्म कैसे अद्भुत है, अभी 6 दिन के भी नहीं है और बहुत बड़ी भारी भरकम राक्षसी सुंदर रूप धारण करके 12 किलोमीटर से लंबी राक्षसी आई, 12 माइल से लंबी पूतना, और केवल कोमल होंठों से उसके स्तन को चूसते हुए दूध के साथ उसके प्राण पी लिए। तो ये तो कोई सामान्य बच्चा नहीं कर सकता, ये तो भगवान 7 साल की आयु में भगवान ने संसारी दृष्टि से इस गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर को उठा के ऐसे अपने छाते की तरह हाथ पे रख दिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति का कर्म नहीं हो सकता है। और भगवान क्या नहीं कर सकते, इतने सारे तारे आकाश में उसको चला रहा है, ये धरती के नीचे पानी है, धरती डूब नहीं रही है तो इसको चला रहा है, तो पहाड़ को उठाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्या है जो नहीं कर रहे हैं भगवान। ये तो लिख पाए तो 15वें अध्याय भगवत गीता में है कि पृथ्वी में प्रवेश करता हूं इसलिए ये अपनी जगह पे खड़ी है और सबको धारण कर रही है, नहीं तो नीचे चली जाए, रसातल में चली गई थी पहले, और वहां से तो भगवान निकाल के लाए थे वारा देव, नहीं तो चली गई थी गर्भ सागर में, ये पृथ्वी डूब गई थी, इसके नीचे पानी तो है, बोर करते हैं पानी निकलता है, चारों ओर से समुद्र का पानी है, फिर डूब क्यों नहीं जाती। तो भगवान कहते हैं मैं इसके अंदर प्रवेश करके इसकी रक्षा करता हूं। वैसे पृथ्वी भगवान की पत्नी कहलाती है और विष्णु पत्नी है पृथ्वी और सबकी माता है पृथ्वी, तो भगवान उसको धारण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे ये भगवान के जन्माष्टमी हम हर साल मनाते हैं, बहुत अच्छा उत्सव क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन असल में जन्माष्टमी का जो सही आनंद तब हमारे जीवन में आएगा जब वसुदेव की तरह हमारे हृदय में भगवान का प्रकट्य हो, और उसके लिए हमारे को विशुद्ध सत्व गुण, एक होता है तमोगुण जो जिसमें आलस होता है, निद्रा होती है, अज्ञान होता है, एक होता है रजोगुण जिसमें लोभ लालच होती है, और एक होता है सतोगुण जिसमें ज्ञान आदि सुख होता है, लेकिन उससे ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण, उसको कहते हैं विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्द्यते, जो विशुद्ध सत्य है उसको वासुदेव कहते हैं। वो स्थिति हमारी हो जाएगी तो जैसे वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए, ऐसे वो भगवान हमारे जब मन में प्रकट होंगे तो हमारा हृदय इतना आनंदित हो जाएगा, तब असल में हमारी जन्माष्टमी होगी, तब वो जन्माष्टमी करने से हमारे को जो उल्लास होगा उसका कोई तुलना नहीं, वो अनुपम होगा, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको साधन करना पड़ेगा क्यों, तो फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाए जिसके अंदर भगवान का प्रकट्य हो। ऐसे वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा, वो 6 गर्भों को बोलते हैं षड गर्भ, वो षड गर्भ को हमारे आचार्यों ने लिखा है मरीचि मन का प्रतीक है, वो मरीचि के पुत्र थे, मरीचि मन है और मन के 6 दोष है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब तक ये दोष हृदय में रहेंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होगा। तो भक्ति करने से हमारे हृदय में भौतिक जगत में भय बनेगा और भय से कंस भय है, उसके भय से देवकी भक्ति है जिसके हृदय से ये 6 दोष समाप्त हो गए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तब भगवान के लिए जगह आसन बनाने के लिए बलराम जी 7वें गर्भ के लिए के रूप में देवकी के उदर में प्रकट होके आसन बनाया, और फिर भगवान ने देवकी को कहा कि इसको रोहिणी के उदर में स्थापित करो क्योंकि ये रोहिणी का पुत्र है, मेरा आसन बनाने के लिए गया है। तो ऐसे 7वां 6 जब तक हमारे हृदय से दोष नहीं जाएंगे तब तक शुद्ध सत्वगुण की स्थिति नहीं होती है, तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होता। तो भगवान का प्रकट्य हमारे सबके हृदय, भगवान अंदर बैठे हैं, कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस ये है कि अंदर जो अज्ञानता है जो अंधकार है उसको हमको दिव्य ज्ञान से हटा देना है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे अंदर। वो विशुद्ध सत्व स्थिति के ऊपर तक आने के लिए हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, और कल युग में ये साधन बहुत सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये मंत्र जपने से चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी चित्त रूपी हृदय जो दर्पण के समान शीशे के समान है, उसके ऊपर जो भी कचरा कई जन्मों का जमा हुआ है, ये नाम कीर्तन करने से धुल जाएगा, तो भगवान जो अंदर बैठे हैं वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये साधन हमको सावधानी से करना चाहिए, हर जन्माष्टमी कुछ संकल्प करना चाहिए कि हम अब इस साधन को ठीक करेंगे, क्योंकि एक उम्र का साल जा रहा है, तो जा रहा है तो हमको इमरजेंसी में जैसे काम करना होता है, ऐसे बहुत तत्काल स्थिति समझकर अपने साधन को थोड़ा सा संकल्पबद्ध होके कमिट करना चाहिए। जब तक कमिटमेंट जीवन में नहीं है, तब तक जीवन में आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। धार्मिक होना एक बात है, पायस होना एक बात है, पूजा करना एक बात है, दान पुण्य करना एक बात है, लेकिन कमिटमेंट करना भगवान को पाने के लिए दूसरी बात है। ये सिद्धांत ही कुछ और है। बहुत से धार्मिक लोग हैं, बहुत से दानी लोग हैं, बहुत से पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, कमिटमेंट जब तक नहीं है तब तक प्रगति आध्यात्मिक संभव नहीं है। तो जन्माष्टमी, ये जन्माष्टमी आज तो यहाँ हम मना रहे हैं, 25 तारीख को जन्माष्टमी विश्व भर में मनाई जाएगी। आप 2-3 दिन में कुछ संकल्प कर लें कि भगवान को पाना है, इस जन्म में पाना है, ऐसा मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प कर लेंगे तो भगवान मिलने में कोई देर नहीं है। वो तो 1 मिनट में भी मिल सकते हैं, नहीं तो 1,00,000 जन्म के बाद भी मिलना संभव नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है, ये सारा आश्रित है हमारे संकल्प के ऊपर। हमारा संकल्प दृढ़ है तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के आविर्भाव को वही सही माना में समझ सकता है जिसके मन में भगवान प्रकट हुए हैं, नहीं तो उत्सव मना के कुछ न कुछ पुण्य अर्जित हो सकते हैं, लेकिन भगवान के जन्म की दिव्यता को समझने के लिए अपने हृदय को शुद्ध सत्व से संचित करना पड़ेगा, तब भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे और सबके हृदय में प्रकट होंगे। आज नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो किसी न किसी जन्म में होंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन ऐसा मौका जैसा कलयुग में हमको सरलता का मिला है, ऐसा और युग में मिलेगा नहीं। इसलिए कलयुग का एक ही भला कार्य है कि इसमें भगवान तत्काल मिलते हैं, इमरजेंसी में जैसे बीमार लोगों की पहले जो इमरज सबसे ज़्यादा दुखी होता है उसका जल्दी चिकित्सा की जाती है, ऐसे कलयुग के लोग बेचारे बहुत बड़े परेशान हैं, इसलिए उनको उधारता भी बहुत जल्दी से होती है। सतयुग के लोगों की आयु ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, लेकिन कलयुग में केवल जप के द्वारा भगवान के नाम के, भक्तों का संग और भगवान के नाम का जप और हरि कथा में आना, ऐसा थोड़ा अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते हृदय शुद्ध होने लगेगा। आज समय थोड़ा अधिक हो रहा है तो वहाँ यहाँ वाणी को विराम देते हैं। बच्चा थोड़ा 15-20 मिनट का, आपके बच्चे कुछ ड्रामा क्या कृष्ण लीला के ऊपर करेंगे, उसका दर्शन कीजिए। हरे कृष्ण।